समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर के हम स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। मैं हूं निखिल कुमार, मेरे साथ में है सायरा मुश्तबा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार निखिल, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑन दिस वीकेंड एडिशन ऑफ आज सवेरे। एंड यू आर लिसनिंग टू दिस ब्यूटिफुल फ्लूट and that is by Pannalal Ghosh, and today of course we remember him on his death anniversary. So we remember Pannalal Ghosh and so many other luminaries in this show we shall pay tribute. Aur aaj to ek se ek keh sakte hain logon ke hastiyon ke hum log zikr karne wale hain, but first of course we'll start with the headlines.
Bilkul.
Scrutiny of nomination papers for the third phase of Lok Sabha elections will take place today. Filing of papers for the phase ended last evening. 94 parliamentary seats in 10 states and 2 union territories will go to polls in this phase on the 7th of May. Monday is the last day for the withdrawal of candidature. Filing of nominations for the fourth phase of Lok Sabha polls began on Thursday. 96 parliamentary seats spread over 9 states and a union territory will go to polls in this phase on the 13th of May. Simultaneously, notification was issued for single-phase assembly elections in Andhra Pradesh for 175 seats and the first phase of assembly polls in Orissa for 28 constituencies.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शानदार प्रतिक्रिया मिली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वोट डालने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया।
A high voter turnout of over 62.37% was reported in the 102 Lok Sabha seats which went to polls in the first phase of Lok Sabha elections yesterday. Polling remained largely peaceful, with voters from various walks participating enthusiastically despite the heat wave in a dazzling display of civic responsibility and pride. A total of 1,625 candidates were in the fray in this phase. Senior BJP leaders and union ministers Nitin Gadkari, Sarbanand Sonowal, Kiran Rijiju, Dr. Jitendra Singh, Sanjeev Balyan, and as well as BJP leaders Tamarisai Soundararajan and Jitin Prasad, and Congress leaders Gaurav Gogoi, Karthik Chidambaram, and Nakul Nath and DMK's Dayanidhi Maran were prominent faces whose political fate was sealed in the EVMs yesterday. The Election Commission has thanked voters and the entire election machinery. 56 villages in Chhattisgarh's Bastar and Shompan tribe of Great Nicobar voted for the first time. The Shompan tribe are the indigenous people of the interiors of Great Nicobar Island and are designated as a particularly vulnerable tribal group. A large number of first-time voters also participated enthusiastically. Polling was seamless based on meticulous planning and execution by the commission and its officials on the field.
जम्मू कश्मीर के 5 जिलों डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, रामबन और उधमपुर में खराब मौसम के बावजूद कल मतदान जारी रहा। इन इलाकों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इन क्षेत्रों में लगभग 68.27% मतदान रिकॉर्ड किया गया। 5 जिलों में 16,23,000 मतदाताओं के लिए 2,637 मतदान केन्द्र बनाए गए थे। 11,000 से अधिक मतदानकर्मी इस दौरान ड्यूटी पर रखे गए थे।
In some international news, North Korea today said that it has conducted tests of a super large cruise missile warhead and a new anti-aircraft missile in a western coastal area as it expands military capabilities in the face of deepening tensions with the United States and South Korea. North Korean state media said the tests attained an unspecified certain goal. North Korea conducted a similar set of tests in February, but at the time did not specify the names of the cruise missile or the anti-aircraft missile, indicating it was possibly seeing technological progress after testing the same system over weeks. North Korean state media insisted that the tests were part of Pyongyang's regular military development activities. And tensions on the Korean Peninsula are at their highest in years, with North Korean leader Kim Jong-un dialing up his weapons demonstrations, which have included more powerful missiles aimed at the U.S. mainland and U.S. targets in the Pacific.
G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए ईरान पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। उन्होंने दोनों पक्षों से संघर्ष से बचने का आग्रह किया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने इटली की कैपरी में औद्योगिक देशों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नवीनतम घटनाक्रम को हल करने के लिए 3 दिवसीय बैठक का एजेंडा बदल दिया गया है। इससे पहले इसराइल ने अपने पर किए गए हमले के जवाब में ईरान पर हमला किया था। इस बीच अमरीका ने इसराइल के कट्टर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की एक सहयोगी और 2 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर उपनिवेशवादी हिंसा के आरोपी इसराइली नागरिकों के लिए धन जुटाने का आरोप है। अमरीका ने दक्षिणपंथी समूह लिहावा के संस्थापक और नेता बेन सियोन कॉपस्टीन पर भी प्रतिबंध लगाए हैं, जो गैर यहूदियों के साथ यहूदियों के एकीकरण का विरोध करते हैं और धर्म तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अरब देशों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए मिसाइल योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमरीकी विदेश विभाग ने बताया कि ये कंपनियां चीन की शियान लॉन्गटे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड और ग्रैंडपैक्ट कंपनी लिमिटेड तथा बेलारूस की मिनिस्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये संस्थाएं नरसंहार के हथियारों के प्रसार में लगी हुई हैं।
And in IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Chennai Super Kings by 8 wickets in Lucknow last night. Chasing a target of 177 runs, Lucknow overhauled the score in 19 overs, posting 180 runs for the loss of 2 wickets. Today, Delhi Capitals will shake on Sunrisers Hyderabad in Delhi. The match will start at 7:30 p.m.
भारतीय रेलवे ने इस महीने की 14 से 16 तारीख के बीच में 3 दिन की अवधि में 2,86,00,000 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय की है। भारतीय रेलवे गर्मियों में रेल यात्रियों की सहायता के लिए 1 अप्रैल से 30 जून के बीच विशेष रेलगाड़ियों के 9,111 अतिरिक्त फेरे चला रहा है। और इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के पूर्वी तथा दक्षिणी इलाकों में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार तटीय, आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगाना और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में मंगलवार तक लू की स्थिति बनी रहेगी। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। और श्रोताओं, अब समय हो चला है प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरों को जानने का। तो सबसे पहले सायरा में बताएंगे कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में क्या हुआ है।
Let's start with Chennai. Chennai in Tamil Nadu, State Home Secretary P. Amrita has issued an order to cut a day's casual leave or earned leave from the leave account of staff members of home and prohibition and excise department if they haven't voted. The secretary instructed that everyone should cast their votes without fail. All the second level officers are instructed to ensure that the staff members under their control exercise their franchise. Moving on to Bengaluru, after the last day to file nominations ended yesterday for the third phase of Lok Sabha elections, there are 337 candidates in the fray for the 14 seats in Karnataka. According to statistics released by the Chief Electoral Office yesterday, 309 males and 28 female candidates have filed 503 nominations since 12th of April, when the filing began for this phase. The highest number of 40 candidates have filed nominations from Devangere and the least, which is 11, from Bellary, that is the seat reserved for scheduled tribes. The last day to withdraw the nominations is 22nd of April and elections will be held on the 7th of May. For by-elections to the Shorapur Assembly seat too, yesterday was the last day to file nominations. 7 candidates have filed nominations to contest from the seat, including Congress, BJP, Samajwadi Janata Party and 4 Independents. And moving on to Hyderabad, in Telangana, 8 persons filed their nominations in Hyderabad yesterday on the second day of filing nominations. Out of the 8 people, 6 persons filed for Secunderabad constituency, while 2 have filed for Hyderabad constituency. Union Minister and BJP State President G. Kishan Reddy, T. Padma Rao from Bharat Rashtra Samiti, B. Sunita Rani from Socialist Party India are among those who filed nomination papers for Secunderabad Lok Sabha constituency. For Hyderabad constituency, All India Majlis Ittihadul Muslimin AIMIM Chief Asaduddin Oaisi and an independent have filed nominations for Hyderabad constituency. Nominations will be received till 3 p.m. on 25th of April. Meanwhile, Hyderabad District Election Officer DAO and GHNC Commissioner Ronald Rose said that prior permission should be obtained for political meetings and rallies. So, Nikhil, this was the buzz that I had from these 3 metros. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai, Kolkata?
जी हाँ, चुनाव की सरगर्मियां जोर पकड़ रही है, तो इस बीच राजधानी दिल्ली में अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस कड़ी में कल उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने अपने लोकसभा क्षेत्र के खजूरी क्षेत्र में आयोजित एक सामाजिक बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने बुराड़ी क्षेत्र में भी लोगों से जनसंपर्क किया। वहीं नई दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने पूर्वी किदवई नगर में एक बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने पटपड़गंज गांव में पदयात्रा की। पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने कल पटेल नगर में सुबह की सैर के दौरान लोगों से मुलाकात की। वहीं चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल ने रामलीला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में छठे चरण के तहत मतदान के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और मतदान 25 मई को होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां से वक्फ बोर्ड में नियुक्ति मामले में बृहस्पतिवार को देर रात तक पूछताछ की। अमानतुल्लाह खां बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे थे, जहां निदेशालय के अधिकारियों ने उनसे 13 घंटे पूछताछ की। आम आदमी पार्टी के विधायक पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 32 लोगों की अवैध रूप से नियुक्ति की थी। दिल्ली चुनाव आयोग ने अपनी स्वीप पहल के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल राजधानी के लाडपुर गांव में फुटबॉल मैच का आयोजन किया। इस मैच में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और वहीं चुनाव आयोग कार्यालय द्वारा रोहिणी क्षेत्र के एक स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता और त्रिनगर क्षेत्र में स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिल्ली भाजपा मंदिर प्रकोष्ठ राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हिंदू नववर्ष समारोह का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में देश के 31 महामंडलेश्वर समेत 5,000 से अधिक संत महात्मा शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण 25 अप्रैल से शुरू होगा। विद्यार्थी 25 मई तक अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके बाद दाखिले का दूसरा चरण शुरू होगा। इस वर्ष स्नातकोत्तर के लिए कुल 13,500 सीटें हैं और यह बताया गया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इस वर्ष हिंदू स्टडीज, पब्लिक हेल्थ, चाइनीज स्टडीज, कोरियन स्टडीज और मास्टर इन फाइन आर्ट्स जैसे पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। अब चलते हैं मुंबई की तरफ। तो गर्मी के मौसम के दौरान अधिक ट्रेन यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए पनवेल नांदेड़ के बीच अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है। पनवेल हजूर साहिब नांदेड़ ग्रीष्मकालीन स्पेशल पनवेल और हजूर साहिब नांदेड़ के बीच रेलगाड़ी चलेगी और इसके अलावा कल्याण, इगतपुरी, नाशिक, मनमाड, नागरसोल, रोटेगांव, लासूर, औरंगाबाद, जालना, परतूर, सेलू, मानवत, भरप्रक्षणी और पूर्णा पर ये रेलगाड़ियां रुकेंगी। इनके लिए बुकिंग आज से शुरू हो गई है। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रामकरण यादव ने पुणे मुंबई मार्ग पर कर्जत लोनावाला खंड का व्यापक प्री मॉनसून निरीक्षण किया है। महाप्रबंधक ने ट्रैक और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों का निरीक्षण किया और इस बीच चट्टान गिरने, भूस्खलन के लिए कारकों पर महत्वपूर्ण जानकारी को समझने और पहाड़ी पर बचाव के लिए कई उपायों की योजना बनाने तथा इनकी चोटियों और ढलान का निरीक्षण भी किया गया है। अब चलते हैं कोलकाता की तरफ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कल कूचबिहार में दो अलग अलग घटनाओं में राजपुर थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में दूसरा व्यक्ति घायल हुआ। अधिकारी ने यह भी बताया है कि कुल 12 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें से 10 निवारक और 2 विशिष्ट हैं। सी विजिल ऐप सहित निर्वाचन आयोग को प्राप्त शिकायतों पर समाधान कर दिया गया है। आयोग को कूचबिहार से 296, अलीपुरद्वार से 162 और जलपाईगुड़ी से 125 शिकायतें मिली थी। तो ये थी महानगरों से जुड़ी हुई खबरें। और अब श्रोताओं नजर डाल लेते हैं आज के मौसम पर। दिल्ली में आज दिन के समय में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बात करें कोलकाता की तो गर्मी की लहर चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सारा ये तो बात हुई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। अब आप बताएं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में आज मौसम कैसा रहेगा?
वेल निखिल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टी क्लाउडी स्काई टुडे। मिनिमम टेम्परेचर वाज 29 व्हाइल मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल आल्सो हैव अ पार्टी क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 व्हाइल मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस। And Hyderabad is expected to have rain or thunder showers, which would occur towards the afternoon or evening. Temperatures in Hyderabad will hover between 27 and 39 degrees Celsius. एंड नाउ इफ वी कम टू दैट सेगमेंट ऑफ आवर शो निखिल, जब हम लोग याद करते हैं दैट व्हाट मेड दिस डे स्पेशल, सो वी विल फ्लिप द पेजेस ऑफ हिस्ट्री एंड लुक बैक व्हाट वर द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन दिस डे. We'll start with 1611, when Macbeth Simon Forman recorded the first known performance of Shakespeare's tragedy Macbeth at the Globe Theatre in London.
और श्रोताओं को बता दें कि वर्ष 1999 में आज के दिन जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमुट कोल अमरीकी सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किए गए थे.
And on this day in 1792, Austria faced conflict with France, initiating the French Revolutionary Wars. Also on this day in 1841, Edgar Allan Poe's story, The Murders in the Rue Morgue, first appeared in Graham Ladies and Gentlemen's Magazine. The tale is generally considered to be the first detective story.
2006 में आज के दिन ही भारत ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की थी और आज के दिन ही वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 दिन बिताने के बाद पहला दक्षिण कोरियाई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सकुशल लौट आया था.
And Nikhil, tell me, especially people who live in metros like us, we are mostly dependent on the पैकेट वाला दूध आज भी से इजेंट इट.
बिल्कुल.
बट आपको पता है कि जो ये पास्चराइज्ड मिल्क होता है इसकी शुरुआत कब हुई थी?
नो आइडिया.
वेल इट वॉज ऑन दिस डे इन 1862 द फर्स्ट पास्चराइजेशन टेस्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन दिस डे इन 1862 बाय फ्रेंच मैन लुई पास्चर एंड क्लाउद बर्नार्ड. Pasteurization utilizes heat to destroy organisms which would produce illnesses or which would produce alterations in certain foods. The process is generally applied to milk. However, it was initially developed for alcoholic products as well. And that is the reason, aap dekhiye, because ye pasteurized milk hota hai. Hmm. Although likha rehta hai, isme used by next day or something,
yes,
like that. But agar aap teesre ya chauthe din bhi usko boil karte hai, to it's still there. Why? Because of the pasteurization. Also on this day in 1898, President William McKinley asked Congress to declare war on Spain on this day.
वर्ष 2011 में आज के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था और ये उस दौर की बात है जब अंतरिक्ष में हम इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे लेकिन भारत ने वहां से जो चलना शुरू किया तो आज हम पूरे विश्व के उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च करते हैं, उन्हें स्थापित भी करते हैं.
That's true.
वर्ष 2012 में आज के दिन अमरीकी मीडिया ने भारत की अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर कहा था कि इससे भारत अपने पड़ोसी देशों से कहीं आगे निकल चुका है. तो ये थी वो घटनाएं जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की थी इतिहास के पन्नों में. और अब समय हो चला है कि जानी मानी हस्तियों को हम याद करें. तो श्रोताओं, सबसे पहले आपको बता दें कि आज है पुण्यतिथि. गौरीशंकर हीराचंद ओझा के भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे और उन्हें इतिहास, पुरातत्व विज्ञान और प्राचीन लिपियों में विशेषज्ञता प्राप्त थी. वर्ष 1937 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था और ओझा जी आधी शताब्दी तक ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े रहे. वे भारत के अतीत का मार्ग टटोलने के निरंतर आलोक में अपने को पाते रहे. उनकी रचनाओं की हम बात करें तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, सोलंकियों का इतिहास, पृथ्वीराज विजय, कर्मचंद वंश और राजपूताना का इतिहास है.
And at the beginning of the show, we remembered Pandit Pannalal Ghosh, also known as Amal Jyoti Ghosh, who was, of course, a bansuri player and composer. He was a disciple of Alauddin Khan and is credited with popularizing the flute as a concert instrument in Hindustani classical music and also the pioneer of Indian classical flute. And Nikhil, unhone kuch innovations kiye, and in fact, he incorporated what is known as the Tivra Madhyam hole, which is also known as the Dhruv Madhyam hole, placed off the center line of fingering holes at the bottom of the flute. And veteran florist Nityanand Haldipur, who is also his direct disciple, explains that this hole was designed specifically to play the Tivra Madhyam Ma, or the fourth note of the lower octave, especially in rags such as Puriya, Darbari and Bihag, where a Madhyam to Pancham means is required. It can even give the Kharaj ka Gandhar, that is the third note of Ga of the lower octave as well. The hole too was changed by the late legend to enable the little finger to reach the hole. For rags such as Darbari, where the lower octave or the Mandra Saptak is explored in detail, Pannalal Ghosh invented another bass flute with just 4 holes, which was almost 40 to 42 inches long.
सायरा, आपने इतनी सारी बातें बताई, मैं बस दो बातें बोलना चाहूंगा कि वर्ष 1938 में पन्नालाल घोष ने यूरोप का दौरा किया था और वे भारत के उन शास्त्रीय संगीतकारों में शामिल थे जिन्होंने विदेश में सबसे पहले भारत की तरफ से कार्यक्रम पेश किया था और उन्हें यूं ही बांसुरी का मसीहा नहीं कहा जाता क्योंकि जो उन्होंने बांसुरी के लिए किया उसकी वजह से आज भी लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है कोमल कोठारी की। वे राजस्थान के एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थानी लोकगीतों और कथाओं के संकलन और शोध के लिए समर्पित थे। उन्हें सरकार ने 2004 में कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और आपको बता दें कि ये कोमल कोठारी जी के परिश्रम का ही परिणाम था कि 1963 में पहली बार मंगणियार कलाकारों का कोई दल राजधानी दिल्ली आया और यहां पर आकर मंच पर अपनी प्रस्तुति दे सका था। कोमल कोठारी ने राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत और वाद्यों के संरक्षण, लुप्त हो रही कलाओं की खोज और उन्नयन तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने में एक सफलतापूर्वक योगदान दिया था और उन्हीं के प्रयासों से बोरुंदा में रूपायन संस्था की स्थापना की गई थी। और विभिन्न प्रकार के काम करने के बाद कोमल कोठारी 1958 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी में कार्य करने लगे और फिर अगले 40 साल तक उन्होंने पूरे जुनून के साथ इसमें काम किया और लोक संगीत जो राजस्थान के आज हम सुनते हैं बड़ी आसानी से ये संरक्षित करने का काम उन्होंने किया था। और आपको बता दें कि श्रोताओं कि आज ही पुण्यतिथि है बाबूलाल गोवर्धन जोशी की। वे हॉकी के खेल से संबंधित प्रसिद्ध सांख्यिकीविद और इतिहासकार थे और भारत सहित दुनियाभर के हॉकी खिलाड़ियों के इतिहास और उनके आंकड़ों के जानकारी को सिलसिलेवार ढंग से सहेज कर रखने वाले व्यक्ति थे और हॉकी से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकता था वो बाबूलाल गोवर्धन जोशी के पास जरूर मिलता था।
Today we are also remembering Wajahat Mirza, and of course he doesn't need any introduction. He penned dialogues for some of the most successful films in India, especially in the 50s and 60s, and he's best known for Mughal-e-Azam, and of course the Academy Award nominee Mother India. He won the Filmfare Best Dialogue Award twice, that is in 1960 for Mughal-e-Azam and in 1961 for Ganga Jamuna. जब मुगल-ए-आज़म के डायलॉग्स की बात कर रहे हैं तो अपने आप ही कानों में भारी सी बैरिटोन वॉइस ऑफ पृथ्वीराज कपूर गूंजने लगती है, isn't it? Let's listen to it.
हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी।
कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कम थी।
अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे,
आरज़ुएं और बढ़ जाएंगी
और बढ़ती हुई आरज़ुओं को कुचल दिया जाएगा
और जिले लायक इंसाफ।
हम एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है। तुझे सलीम को भूलना होगा।
भूलना होगा
यकीनन।
And among his notable films is Yahudi Ki Ladki, Anokhi Mohabbat, Hum Tum Aur Woh, 300 Din Ke Baad, Watan Ek Hi Rasta, Aurat Behan Roti, Lal Haveli, Shehnshah Babar, Prabhu Ka Ghar and many others. So that was Wajahat Mirza.
Shota, aapko bata dein ki aaj hi punyatithi hai Kishore Nandalaskar ki. Ve Bollywood aur Marathi filmon ke abhineta rahe hain. Unhone waise to kai sari filmon mein kaam kiya tha lekin jis film mein sabse zyada Hindi filmon mein mashhoor hue woh thi Jis Desh Mein Ganga Rehta Hai, jisme unhone Sannata ka kirdaar nibhaya tha. और उस फिल्म में उन्होंने एक गूंगे और बहरे का किरदार निभाकर जो प्रसिद्धि पाई वो बेहद कमाल की थी। उन्होंने कई अन्य फिल्मों में काम किया जिनमें पूर्ण सत्य सबसे ज्यादा पसंद की गई। मराठी मनोरंजन इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर स्टार थे और किशोर ने अपनी पूरे फिल्मी करियर में लगभग 40 से ज्यादा फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया था। और श्रोताओं, हम याद करते हैं शकील बदायूनी को। आज उनकी पुण्यतिथि है। एक महान शायर और गीतकार, वैसे तो तहजीब के शहर लखनऊ ने फिल्म जगत को कई हस्तियां दी हैं लेकिन शकील बदायूनी का जो नाम है वो कामयाबी की चमक के साथ में आज भी आसमान पर बहुत ही शानदार तरीके से जगमगाता है, क्यों सायरा?
बिल्कुल, वैसे तो उनका कह सकते हैं बिकॉज उनका तखल्लुस आप देख सकते हैं बदायूनी है, तो ही वॉज बॉर्न इन बदायूं एंड हिज फादर Muhammad Jamal Ahmad Sukhta Khadri wanted him to have a successful career, and thus he arranged Arabic, Urdu, Persian, Hindi tuitions for Shakil at home. But his inclination towards poetry was not hereditary like other shayars. Kehte nahi hai ki shayaron ke khandan mein zyada tar har koi shayar ho jata hai, but that was not the way we acted Shakil Badayuni's place. And one of his distant relatives, Ziaul Qadri, was a religious shayar, and Shakil Masoodi was influenced by him, and contemporary environment of Badayun led him to poetry. Or of course, then when he joined in the Aligarh Muslim University in 1936, and we all know ki AMU mein aaj bhi matlab sher o shayari ka bahut zyada chalan hai, so probably that was the period where he flourished. We all know that he has penned some very beautiful songs, lekin Shakil jab apne aap ko introduce karte the kisi se to yahi kehte the, main Shakil dil ka hoon tarjuma, keh mohabbaton ka hoon razda, mujhe fakhr hai meri shayari meri zindagi se juda nahi. That was Shakil Badayuni, and let's listen to some of his songs.
Beqarar karke hame yun na jaiye, aap to hamare kasam laut aaye. Dekhiye wo kaali kaali badliyan, zulf ki ghata chura na le kahin. Chori chori aake shokh bijliyan, आपकी अदा चुरा न ले कहीं. यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई. बेकरार करके हमें यूं न जाए.
और श्रोता, आपको बता दें कि शकील ने अपनी शायरी की कामयाबी से उत्साहित होकर आपूर्ति विभाग की सरकारी नौकरी छोड़ दी और 1946 में दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, और फिर जो गीतों में लिखना शुरू कर दिया, तो फिर अपने गीतों के लिए लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था. उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1960 में मिला था, 14वीं का चांद फिल्म के लिए, जिसका जो टाइटल सॉन्ग था उसके लिए. उसके बाद कहा जाता है कि शकील ने अपनी शायरी में जिंदगी की हकीकत को ही बयां किया है, और उन्होंने जो गीत रचे वो बहुत ज्यादा रोमांटिक अगर ना भी माने जाए तब भी दिल की गहराइयों को छू जाते थे. तो आइए सुनते हैं उनकी दूसरी रचना.
14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी.
श्रोताओं, आपको बता दें कि आज जयंती है लांस नायक लाला राम की. वे भारतीय थलसेना के 41वें डोगरा में लांस नायक थे, और उन्होंने पहले विश्व युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी, और जो बहादुरी उन्होंने दिखाई उसके लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था. और आज ही जयंती है गोपीनाथ मोहंती के. वे उड़िया भाषा के जाने माने साहित्यकार थे. वर्ष 1930 से 1938 के बीच में उनके लेखन को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था, और 1973 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उसके बाद 1981 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था. उनकी रचनाएं हैं मन गहिरा चाश, परजा, माटी मटाल, नववधु, मुक्तिपथे, अमृतर संतान और समान पाटी. ये सारी ऐसी रचना है जो आज भी बहुत पसंद की जाती हैं.
Today is also Babita's birthday, and of course we know that she is a very renowned actress of yesteryears who predominantly appeared in Hindi films. Her debut film was successful drama Das Naag, but it was the romantic thriller Raaz opposite Rajesh Khanna that gained her recognition. And she has two beautiful daughters, Karishma Kapoor and Kareena Kapoor, both very renowned actresses in their own right. Let's listen to this beautiful song.
श्रोताओं, आज जयंती है ज्योतिका रॉय की. विभजन गायिका थी, और उन्होंने अपने 4 दशक लंबे करियर में 200 से अधिक हिंदी और 100 से अधिक बंगाली गानों को आवाज दी थी, और हिंदी फिल्मों के लिए उन्होंने हिंदी भक्ति संगीत भी रिकॉर्ड करवाए. और आपको बता दें कि उन्हें 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है.
Today is also Mamta Kulkarni's birthday, a former Indian actress and a model. She also appeared in many Hindi films, aur unka ek gana hai jo bahut famous hai. Let's listen to it. And well, अब हम लोग के जाने का वक्त आ गया है. So well, stay tuned for coming up next is समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in, listeners. Have a great day ahead.
नमस्कार.